हेलो, गुड मॉर्निंग लिसनर्स. मैं गुलरेज आपके साथ जुड़ रहा हूँ डॉक्टर दिवस के विशेष एपिसोड में, जिसका नाम है लाइटर साइड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. और इसके साथ हम कहते हैं कि जब कोई बीमार हो या किसी पीड़ा से ग्रसित हो तो पहले भगवान के नाम से निकलता है, फिर डॉक्टर में उसे भगवान दिखता है. अगर आपकी मुश्किल के समय एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए और प्यार और मानवता की भावना आपके देखभाल करे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है. इसी के लिए आज हमारे साथ एसकेजी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इकबाल रांची से सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आफ्ताब आलम अंसारी जुड़ रहे हैं, जो जानेंगे डॉक्टर आफ्ताब से इस बेडी बिजी डे शुडे शेड्यूल लाइफ में वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज कैसे करते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जानेंगे, उनके चाइल्डहुड डेज और कॉलेज डेज के बारे में भी जानेंगे. हाँ तो सर, डॉक्टर आफ्ताब सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सर ज़रूर बिजी रहते हैं सर, आपका बिजी मोमेंट्स रहता है हमेशा, आप ऑब्वियस है पेशेंट देखते हैं, सारे बिजी शेड्यूल में भी आप अपना पर्सनल वक्त निकालते हैं. सर आपसे एक पहला सर क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा सर, आपके बचपन का सबसे यादगार पल.
थैंक यू गुलरेज फॉर विशिंग डॉक्टर्स डे. ये स्पेशल डे है सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे फैटर्निटी के लिए. तो जहाँ तक मेरे चाइल्डहुड का सवाल है, तो बहुत सारे ऐसे तो मोमेंट हैं, बट एक स्पेशल मोमेंट है व्हेन आई वाज अबाउट 4-5 साल का था. और वो जो मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का, तो उसमें मुझे याद आता है मेरे फादर, जहाँ मैंने एडमिशन लिया था नर्सरी में, दैट वाज क्वाइट नियर बाई, ओनली 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम. तो फादर फर्स्ट डे उंगली पकड़ कर लेके गए थे, और वो जब मुझे छोड़ रहे थे स्कूल के गेट पे टीचर्स के पास, तो वो छोड़ रहे थे, तो मैं अंदर अकेले जाना नहीं चाह रहा था, सिंस इट वाज अ फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. तो फिर फादर ने मुझे समझाया कि देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए, तुम अभी जाओ स्कूल में अंदर टीचर के पास, और आया भी थी शायद, तो अंदर जाओ तुम, और मैं तुम्हारे लिए शाम में बड़े बड़े अनार और संतरे लेके आऊँगा. तो ये लालच दिया मेरे फादर ने मुझे, और मैं अंदर चला गया. फिर वो स्कूल के फर्स्ट डे और स्कूल की लाइफ की एजुकेशन या पढ़ाई की शुरुआत वहाँ से हुई. तो ये बहुत ही मेमोरेबल
है ये चीज़ तो, बिल्कुल सर. और मेरा सर दूसरा सवाल है, ड्यूरिंग योर MBBS डेज, आपके कॉलेज दिनों में कुछ ऐसा गुजरा हुआ पल जो आप हम लोग से शेयर करना चाहेंगे.
उसके बाद जैसे मैंने बताया, ये स्कूल चला, और जो हाई स्कूल से फैमिली में और लोग जो मेडिकल लाइन में और इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे थे, तो हाई स्कूल से ही 8th या 9th क्लास से एक ओरिएंटेशन आ गया कि मुझे इंजीनियर बनना है. और उसके लिए मैंने तैयारी भी की, वैसी मैथ्स वाज माय मेन सब्जेक्ट इन प्लस टू, बट बायो भी था. तो आफ्टर प्लस टू मैं तो इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम दिया. और ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को ये बात मेरे बारे में नहीं पता होगी हॉस्पिटल्स में और मेरे पेशेंट को भी, कि स्कूल के बाद मैंने पहले इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो ब्रांच था. और उसमें करीब एडमिशन के बाद मैं 1-2 महीने रहा कॉलेज में, लेकिन उसके बाद मैंने मेडिकल का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन मेडिकल में भी हो गया. तो ऐसे मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं इंजीनियर से डॉक्टर्स की तरफ चला गया. घर वालों का ये था कि अब तो आप, तुम्हारा MBBS में हो गया मेडिसिन में, तो इसी में अब करो. तो मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं था, बट मैंने ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से ये डॉक्टर के डायरेक्शन में ये लाइफ शुरू हो गई. और MBBS का वक्त बहुत ही अच्छा था, वहाँ हमने पढ़ाई तो की, उसके साथ बहुत क्रिकेट खेला, और उसके साथ घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी. और एक जो शौक थी, जो यूनिक थी मेरे साथ MBBS के डेज में, वो ये था कि मैं, मुझे फोटोग्राफी की बहुत, फोटोग्राफी का बहुत मुझे शौक़ था. तो मैं उस वक्त पूरे कैंपस में, मेरे पास ये SLR था, डिजिटल नहीं होता था उस वक्त, SLR होता था ऐसे नॉर्मल, तो वो मैं सारे कैंपस में फोटोग्राफी किया करता था. ये एक यूनिक था और सब लोग मुझे, बहुत सारे लोग फोटोग्राफर के नाम से भी जानते थे क्लास में।
दैट वॉज रियली नाइस सर, दैट वॉज रियली नाइस सर। आप बीइंग, जैसे बोला जाए सर कि आपका ड्रीम था बिकम ऑनकोलॉजिस्ट, या आपने कुछ और सोचा था सर आगे करने का?
जब मैं MBBS कर लिया तो उसके बाद मन में आता था कि मैं ज्वाइन करूं इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट या पीडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर्स के लिए। बट जब मैंने PG का एग्ज़ाम दिया तो जो मेरा रैंक आया उस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या करूं। तो एक मेरे सीनियर थे डॉक्टर अजहर, वो रेडियोलॉजिस्ट थे, वो PG कर रहे थे रेडियोलॉजी में। उन्होंने सजेस्ट किया आफ्ताब ऑन्कोलॉजी, दैट वॉज इन 2003-04। सो ही उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ऑन्कोलॉजी इज़ अ वेरी अपकमिंग ब्रांच और बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं थी। MBBS के डेज में तो ऑन्कोलॉजी के बारे में शायद ही हम लोग उस वक्त जानते थे बहुत ज़्यादा कुछ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो ही वॉज़ द पर्सन डॉक्टर अजहर, प्रेजेंटली इज़ ए बिग रेडियोलॉजिस्ट इन पटना। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने ये ऑप्ट किया MD का ये सीट, और फिर 3 साल का MD किया। उसके बाद से तो मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बन गया और लाइफ फिर अब ऑलमोस्ट बिन मोर देन 14 डेज, 14 ईयर्स रादर इन पोस्ट MD। तो ये चल रहा है।
दैट वॉज सो नाइस ऑफ यू सर। सर आपके पेशे का आपके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है सर?
ऑन्कोलॉजिस्ट का सारे डॉक्टर्स और इंक्लूडिंग जो एक जनरल चीज़ है सारे डॉक्टर्स में, उनकी सोशल लाइफ बहुत पुअर होती है। जैसे कि वो दिन रात पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें होती रहती है लाइफ में, और फैमिली के लिए फ्रेंड्स के लिए कम टाइम निकाल पाते हैं। तो पर्सनालिटी पे फ़र्क पड़ता है। जैसे मुझे जो है फोटोग्राफी का शौक था वो ऑलमोस्ट छूट चुका है। फोटोग्राफी भी बहुत डेडिकेशन चाहता है। अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए नीड टू पुट लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम्स। तो पर्सनालिटी फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या है कि ऑन्कोलॉजी में स्पेशली के सबको पता है कि मेनी ऑफ द टाइम जो इंडिया में है आधे पेशेंट या आधे से ज़्यादा पेशेंट वेरी एडवांस कंडीशन में आते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं, यंग अडल्ट्स भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो कई बार और वैसे पेशेंट्स के जो क्योर रेट हैं लॉन्ग टर्म वो 40-50% से ज़्यादा नहीं है, स्पेशली एडवांस। तो कई बार हमें देख के अगर रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं जाता है, किसी को हमने इलाज किया और 2 महीने के बाद बीमारी रेकरेंस हो गई, बीमारी वापस आ गई कैंसर की, तो सम टाइम इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। और कई बार पेशेंट बहुत पुअर होते हैं, उसको हेल्प करने लगता है ये कैसे ठीक हो जाए, तो उसकी वजह से भी कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है। तो दैट अफेक्ट्स पर्सनल लाइफ एज वेल एज फैमिली लाइफ।
इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सर, और रिलेटिंग फैमिली, जस्ट आपसे एक ऑफलाइन बात है कि आप इतना बिजी शेड्यूल में भी अपने फैमिली को टाइम देते हो सर, तो आप ऐसी कुछ ऐसी कोई एक्टिविटीज जो हम लोग से शेयर करना चाहोगे जो आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हो?
ओके सो जैसा कि जानते हो गुलरेस, सारे डॉक्टर्स की लाइफ में टाइम तो कम होता है और फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है। बट कीवर्ड है देयर हैज़ टू बी बैलेंस। बैलेंस रखना पड़ता है फैमिली लाइफ वर्सेस पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। तो सारे के लिए अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो वही सक्सेसफुल डॉक्टर है। तो मैं अगर टाइम मिलता है थोड़ा वीकेंड पे, या कई बार 2-3 दिन के लिए छुट्टी मिल गई, वेरी रेयर है कि 1 वीक का छुट्टी मिल जाए, तो उस केस
यस सर,
में आई लव टू ट्रैवल विथ माई फैमिली आउटसाइड टाउन, सम टाइम ऑन माउंटेन्स, सम टाइम बीचेस, सम टाइम अपने रिलेटिव के यहाँ। तो ट्रैवल करते हैं ये और वी इंजॉय अलॉट। तो ट्रैवल 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 ये मेरा पैशन है, ड्राइविंग, और उसको मैं इंजॉय करता हूँ अपने फैमिली के साथ।
थैंक यू सो मच सर, आपके बारे में और अधिक जानने में मज़ा आया, और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं ने भी इस सत्र का आनंद लिया। और इसी के साथ मैं फिर से डॉक्टर आफ्ताब आलम अंसारी सर को डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह सर सारी पेशेंट्स की सेवा करते रहें, और हमें अच्छा लगेगा सर ये जान के।
गुलरेस थैंक यू फॉर विशिंग मी डॉक्टर्स डे अगेन, और तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे भी।
सर एक ऐसा कोई यानी मैसेज आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे सर डॉक्टर स्टे पे?
श्रोताओं को और जो स्पेशली जो अभी न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में डॉक्टर्स बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे, कुछ मैसेज उनके लिए ये है कि आप यू पुट योर बेस्ट इन योर आप अपना बेस्ट करो प्रोफेशनल लाइफ में और अच्छे से पढ़ाई करो, अपने हिसाब से स्पेशलिटी चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और इसके अलावा बट ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए कि आप अपने फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलो। अगर ये करके रहोगे और चलोगे तो यू विल बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर्स।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम ये सेकेंड एपिसोड रैप अप कर रहे हैं और हम जल्द ही एक नए दिलचस्प एपिसोड लेकर वापस आएंगे। टिल देन आप अपना और अपने करीबियों का बहुत ख्याल रखें और सुनते रहें नो इट टू बीट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
एडिंग लाइफ टू यर्स।